आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 44वां संस्करण पुनः सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में भक्त की एक निष्ठा पर प्रकाश डाला गया है। आगे बनारस में पंडित कलराज मिश्र नामक भागवताचार्य रहते थे। पब्लिक की इच्छा अनुसार रामायण गीता पर विवेचना तथा श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा से सुनाया करते थे। एक पुत्र था जिसका नाम धर्मराज था। भागवत की पढ़ाई पूरी की ही थी कि पंडित जी ने किसी यजमान की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट वकील के पास सहायक वकील के तौर पर दिल्ली में रखवा दिया था। लड़का उक्त वकील साहब के बंगले पर ही एक कमरे में रहता था। खर्च के लिए पंडित जी ने अपना एटीएम कार्ड लड़के को उपलब्ध किया हुआ था। फ़ोन द्वारा लड़का अपने हालचाल से समय समय पर अवगत कराता रहता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। बंगला एडवोकेट कॉलोनी में कोर्ट के पास ही था। एक दिन पंडिताइन ने पंडित जी को अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सलाह दी कि लड़के को घर से गए लगभग 7 माह हो गए हैं, एक बार दिल्ली जाकर लड़के के हाल चाल ले आओ। काम से समय निकालकर पंडित जी लड़के से मिलने दिल्ली गए। सब कुछ सुचारू देखकर बहुत पसंद हुए। एक दिन पंडित जी बंगले के सामने पार्क में भ्रमण करने को विचार से राउंड लगा रहे थे तो वहाँ जो नियमित लोग आते थे उन्होंने नए व्यक्ति को पार्क में घूमते देख परिचय लिया तथा उनसे आग्रह किया कि यहाँ सामने लक्ष्मीनारायण मंदिर है, हम लोग आपके मुखारविंद से रामायण पाठ सुनना चाहते हैं। नित्य शाम को 6 बजे से कृपा कर मंदिर प्रांगण में रामायण सुनाने की कृपा करें। सब लोगों के विशेष आग्रह पर पंडित जी निर्धारित दिन समय से रामायण लेकर मंदिर प्रांगण में पहुंच गए। रामायण प्रारंभ करने से पहले पंडित जी एक आसन अपने सामने बिछा कर हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज को आग्रहपूर्वक आह्वान किया तथा कीर्तन के उपरांत रामायण पाठ प्रारंभ किया। रामायण पाठ समाप्ति पर एक वरिष्ठ वकील साहब ने पंडित जी के पास आकर विनयपूर्वक जिज्ञासा प्रकट की कि यह आसन जो आपके सामने बिछा हुआ है क्या सचमुच हनुमान जी उस आसन पर आकर बैठते हैं या आप जैसे पंडितों का धर्म विरुद्ध लोगों में अंधविश्वास फैलाकर धनोपार्जन का सोचा समझा हथकंडा है। वकील साहब के कठोर वचन सुनकर पंडित जी ने कहा कि भाई ये सब तो व्यक्तिगत श्रद्धा एवं निष्ठा की बात है, यह बहस का मुद्दा नहीं है। आप कहें तो मैं कल से कथा बंद कर देता हूँ या फिर आप कथा में आरम्भ कर दें। लेकिन वकील साहब अपनी बात पर डटे रहे तथा कहा कि यह तो आपको सार्वजनिक रूप से सिद्ध करना ही पड़ेगा कि आपके आह्वान पर हनुमान जी सामने बिछाए आसन पर सचमुच में आती हैं। वकील साहब की जिद पर पंडित जी ने बहुत शांत भाव से कहा कि यद्यपि यह आस्था का विषय है लेकिन यदि आप जिद्द ही कर रहे हो तो उक्त बिछाए आसन को अपने साथ घर ले जाओ। कल कथा प्रारंभ के समय आसन वापस ले आना। आपके सामने उक्त आसन पर हनुमान जी विराज महाराज हनुमान जी महाराज को कथा प्रारंभ करने से पहले हमेशा की तरह आह्वान किया जाएगा। इसके बाद अब आसन को उसी स्थान पर ऊपर उठाकर दिखा देना। यदि उठा लिया तो मैं कथा वार्ता का कार्य छोड़कर आपके ऑफिस में चपरासी का कार्य करने लग जाऊंगा, नहीं तो आप वकालत छोड़ देना। सार्वजनिक रूप से उक्त घोषणा के कारण दूसरे दिन मंदिर प्रांगण में उक्त घटना का अवलोकन हेतु काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। समय पर पंडित जी अपने आसन पर आकर बैठ गए और उक्त बगी साहब से आसन लेकर निर्धारित स्थान पर बिछा कर आँख बंद कर हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, सेवक की लाज रख लेना, मैं तो अति मामूली आपका श्रद्धावान सेवक मात्र हूँ, लाज जाएगी तो रघुवीर परिवार की जाएगी। आंखें खोलकर पंडित जी ने वकील साहब से आसन ऊपर उठाने के लिए बोला। तुरंत वकील साहब ने तीन बार आसन की ओर मात्र हाथ ही कर पाए, लेकिन आसन को उठाना तो दूर की बात, काफ़ी प्रयास करने पर भी स्पर्श तक नहीं कर पाए और बुरी तरह से वकील साहब पसीना पसीना होकर पंडित जी के चरणों में गिर गए तथा कहा कि मैंने हार मान ली, आपकी आस्था में कोई बनावट नहीं है। मंदिर प्रांगण में हनुमान जी के नारों से गुंजायमान हो रहा था, क्योंकि इस दृश्य को देखने को कॉलोनी में भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। भीड़ को शांत करते हुए पंडित जी ने कहा कि ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तो तब होती है जब हम भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। साक्षी के रूप में भगवान हर पल हर एक के साथ रहते ही हैं। इसके बाद मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ मंदिर प्रांगण में लोगों के आग्रह पर संपन्न कराकर पंडित जी वापस बनारस रवाना हो गई। उपर्युक्त घटना काल्पनिक नहीं है। बंधुओं, मेरी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया लाइक कमेंट्स व सब्सक्राइब कर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। थैंक यू।